मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 27 अप्रैल 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं अनुपमा, आप आगरा उत्तर प्रदेश से हैं और अनाहत विक्रम, आप गया बिहार से हैं। तो अनुपमा और अनाहत आप दोनों मित्रों का मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं दिया करता हूं और ये मेरी मजबूरी है या कह लीजिए कि कुछ आवश्यकता भी है कि मैं हर शुक्रवार को ये सूचनाएं दूं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, क्योंकि नए नए श्रोता हमेशा इससे जुड़ते चले जाते हैं तो उनकी जानकारी में होना चाहिए। सूचना यह है मित्रों, और ये सूचना इस बार 3 दिनों के लिए है। आपको मालूम है कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन इस बार उसमें मंडे भी शामिल हो गया है, सोमवार का दिन भी शामिल हो गया है, क्योंकि सोमवार को गजटेड हॉलीडे है, यानी कि 3 दिनों तक डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन दूसरी चीजें आपको उसी तरह से मिलती रहेंगी जैसे कि अभी तक मिलती रही है। उदाहरण के तौर पर प्रेस क्लिपिंग्स आपको शनिवार को भी मिलेगी और प्रेस क्लिपिंग्स फिर आपको मंडे को भी मिलेंगी, राइट? प्रेस क्लिपिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक इसी प्रकार से मित्रों जो योजना और कुरुक्षेत्र के आपको 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के आर्टिकल प्रोवाइड्स किए जाते हैं वो आपको शनिवार को दिए जाते हैं, वे भी आपको अवेलेबल रहेंगे। और शनिवार को ही आपको एक साप्ताहिक प्रश्न दिया जाता है जो खासकर मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको वीकली क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और जो हमारे क्लास स्टूडेंट रहे हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ सूचनाएं आप सबके लिए थी। मुख्य विषय के रूप में फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा सा हटकर आपसे बात करने जा रहा हूं, लेकिन आपके सिविल सर्विस से हटकर नहीं। आज मैं जो राजनीतिक दलों का जो स्वरूप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, इस पर थोड़ी सी कुछ बातें करूंगा। बहुत पहले मैंने इस पर बात की थी लेकिन मुझे लगता है कि फिर इस पर दोबारा बात की जानी चाहिए, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ न्यूज देख लेते हैं। आपने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी चाइना में हैं और चाइना में बातचीत होगी। आपने ये भी महसूस किया होगा कि पिछले लगभग 2-3 दिनों से ही लगातार भारत और चाइना के संबंधों को लेकर के काफी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, यहां तक कि एडिटोरियल कमेंट्स तक लिखे जाने शुरू हो गए हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की यह चाइना यात्रा कितनी इम्पॉर्टेंट है। देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा विषय कितना इम्पॉर्टेंट है इससे भी निर्धारित हो जाता है कि उसकी चर्चा कितनी हो रही है। तो मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं भी लगातार आप लोगों को आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी के आर्टिकल्स आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए और कुछ पॉइंट्स भी नोट कर लेने चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये पृष्ठभूमि है। अब आगे जो बातचीत होगी उस बातचीत की जो समीक्षा होगी डेफिनेटली उसमें ये पृष्ठभूमि ही काम आएगी। अगर आपके पास ये पृष्ठभूमि नहीं होगी जो अभी तक आपको पढ़ने को मिल रही है तो मान करके चलिए कि फिर जो आगे चीजें होंगी उस पर भी आपकी पकड़ नहीं बन सकेगी, है ना? तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और इसलिए ज्यादा ये इम्पॉर्टेंट है इस बार के हमारे प्रधानमंत्री जी की चाइना यात्रा, क्योंकि डोकलाम विवाद के बाद ये पहली यात्रा है और डोकलाम विवाद ने भारत और चीन के संबंधों में बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर दिया था। लेकिन चलिए दोनों देशों ने एक तरह से डिप्लोमेटिक सद्बुद्धि कह लीजिए डिप्लोमेटिक सद्भाव के तहत बातचीत के जरिए उस विवाद को हल कर लिया। जो खबर है अखबारों में भी आप देख रहे हैं अगली खबर और न्यूज में भी आपने देखा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति को लेकर के एक विवाद सा खड़ा हुआ है। नहीं, राष्ट्रपति जी ने एक जज नियुक्त किया महिला जज को, उनके खिलाफ याचिका दायर की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और जज न्यायमूर्ति का नाम भेजा था जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अभी इससे पहले इम्पीचमेंट बहुत इम्पोर्टेंट विषय था, है ना, महाभियोग। अब देखिए कि अब अधिकार हम देख रहे हैं कि सरकार के कहां कितने अधिकार हैं। नियुक्ति का मामला है, ये दोनों ही नियुक्तियों का मामला है। तो मित्रों इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए जुडिशरी पर इस बीच में आपने महसूस किया होगा पिछले लगभग एक साल से कि बहुत जबरदस्त बातें हो रही हैं। एक तरीके से वो डिस्कशन के केंद्र में है न्यायालय। कभी न्यायालय के अपनी कार्यप्रणाली को लेकर के, कभी सरकार के साथ टकराव को लेकर के, कभी उसके एक्टिविज्म को लेकर के, अभी लगातार ये बात चल रही है। तो आपको अब जो जुडिशरी की तैयारी करनी है वो अलग अलग कोणों से करनी है। जैसे मैंने महाभियोग की बात बताई, अब देखिए महाभियोग तो किताब में है, आप किताब में पढ़ लीजिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए और इसके बाद जो किताबें अवेलेबल हैं उसमें थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन उसी से बात नहीं बनेगी। देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अगर महाभियोग पर कुछ पूछा भी जाएगा तो आप पाएंगे कि उसका शेड, सीआईयू कह लीजिए, कि उस प्रश्न का झुकाव वर्तमान की तरफ डेफिनेटली होगा। यानी कि वो जानना ये चाहते हैं कि महाभियोग आप उस पर तभी लिख पाएंगे कुछ यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होगी, और यदि नहीं होगी तो कुछ नहीं लिख पाएंगे आप। तो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी भी रखेंगे, फिर वर्तमान में जो बहस चल रही है और जो एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं आपको उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के वो उत्तर आपका सही उत्तर बन पाएगा। मैं प्रेस क्लिपिंग्स के तहत ये आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं। राष्ट्रीय सहारा का आर्टिकल है, वो फैजान मुस्तफा साहब का है। बहुत खूबसूरत लिखते हैं फैजान मुस्तफा साहब, अपने आप में वो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आपने एनडीटीवी पर भी बहस में इनको भाग लेते हुए सुना होगा। ये बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से और बड़े लॉजिक और बैलेंस तरीके से बात करते हैं। तो महाभियोग पर उनका ये आर्टिकल है, तो आप इसे देखें और अपने ढंग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। तो इस तरह से आपकी तैयारी का पैटर्न फ्रेंड्स होना चाहिए। एक टॉपिक के बारे में मैं आपसे और चर्चा करूंगा। खबर में वो अलग तरीके से है, आपने देखा कि किस तरह से कुशीनगर में एक जो ट्रेन और बच्चों के जो वैन थी उसमें टक्कर हुई, इसके बाद दिल्ली में भी एक टक्कर हुई, ये न्यूज में बातें थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के मेंस के लिए जो सड़क सुरक्षा है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, सड़क सुरक्षा। क्योंकि आपने रेडियो न्यूज में देखा होगा कि हमारे जो मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनके आवाज में सीधे सीधे ऐड आ रहा है, वो नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने को सुरक्षित रखिए। तो इसी से कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ रीजंस होते हैं, केवल यही नहीं, अलग अलग टॉपिक के इम्पोर्टेंट होने के अलग अलग रीजंस होते हैं। तो मुझे लगता है सड़क सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर ये न्यूज घटित हो गई है, तो इस पर भी आप लोगों का ध्यान मुझे लगता है कि रहना चाहिए। और जब मौका मिलेगा तो कभी मुख्य विषय के तहत हम लोग इस पर बात करेंगे। न्यूज में आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा उपराष्ट्रपति जी का, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा दिया है, और वो डेटा यह है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें अभी लगभग 70 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है। 70 लाख स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीण क्षेत्र में। बेरोजगारी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। और यहां उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि रोजगार का एक क्षेत्र एकदम खुला हुआ है, 70 लाख रोजगार स्वास्थ्य कर्मी के, और वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोग जाना तो पसंद करेंगे, ग्रामीण युवा तो जाना पसंद करेंगे, चलिए बड़े बड़े शहरों के लोग नहीं जाना पसंद करेंगे, लेकिन अगर उनको भी हम उनके क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करा पाए तो ये कम बड़ी बात नहीं है। आपको ध्यान होगा कि मुझे लगता है कि लगभग 10-15 दिन पहले मैंने डॉक्टर झुंझुनवाला का आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये एक तरफ तो कुछ रोजगारों को कम करेगी लेकिन दूसरी तरफ रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगे, और वो क्षेत्र वे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कर ही नहीं सकती है। अब स्वास्थ्य कर्मी की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर लेगी? तो उन्होंने कहा था कि उधर फिर ज्यादा अवसर उपलब्ध आएंगे, इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने निष्कर्ष में कहा था। तो मित्रों एक आंकड़ा है कि बेरोजगारी पर जब कोई भी प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है तो आपके पास एक तथ्य है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। मित्रों अब मैं आता हूं आइए मुख्य विषय पर। इस मुख्य विषय का चुनाव करने के पीछे बहुत ही सामान्य सी एक न्यूज है और आपने न्यूज में भी सुना, अखबारों में भी आज है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कमलनाथ जी बनाए गए हैं। बस इसके आधार पर मैंने खासकर राजनीतिक दलों का जो स्वरूप होता है इस टॉपिक का चयन किया है और इसलिए खासकर कि इस मैंने पाया है कि स्टूडेंट थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज इस रूप में होते हैं, देखिए प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, मुख्यमंत्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, राज्यों के मंत्रियों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब हाईकमान की चर्चा होने लगती है, पार्टी के राज्य अध्यक्षों की चर्चा होने लगती है, या जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी को रिस्ट्रक्चर्ड करने लगती हैं या उनका पुनर्गठन करने लगती हैं, पार्टियों के जब अपने चुनाव होने लगते हैं, तो मैंने देखा कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये इस तरह से क्यों हो रहा है। देखिए इसके इसी आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस विषय का चयन किया है, तभी आपको पॉलिटिक्स की अच्छी समझ आएगी, जिसे मैं पॉलिटी कहता हूं, जो आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए डेमोक्रेसी किसके माध्यम से चलती है, राजनीतिक दलों के माध्यम से चलती है। तो राजनीतिक दल का मतलब हुआ एक संगठन, एक राजनीतिक संगठन। और देखिए जो संगठन है और भीड़ में फर्क क्या है, भीड़ अनस्ट्रक्चर्ड है, उसका कोई चेहरा नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। और अब तो सोशल मीडिया ने भीड़ का एक जो नेता हुआ करता था पहला, उसको भी खत्म कर दिया। अभी खासकर भारत में जो दलित आंदोलन हुए हैं, आप देख रहे हैं कि उसका कोई नेता मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद जब बाद में जब दूसरा आंदोलन किया सवर्णों ने, उसका भी कोई स्वरूप नहीं मिल रहा है। मतलब अब यूं कह लीजिए कि कोई बिग बॉस है, अनदेखा नेता है, जिसे आप सोशल मीडिया कह रहे हैं, वो ये सब काम करा रहा है। तो भीड़ का कोई संगठन नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन राजनीतिक दलों का होता है। तो ये चेहरा क्या है? देखिए चेहरा बिल्कुल वही है जिस तरीके से सरकार काम करती है। सरकार एक संगठन है, एक वैधानिक संगठन है, संविधान सम्मत संगठन है। राजनीतिक दल उस संविधान को लागू कर पाने या एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारी बनाने के लिए प्रयासरत समूह है ना। वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत इलेक्ट होकर के जाते हैं और फिर संविधान के अनुसार शासन चलाते हैं। उन्हें हम कार्यकारी भी कहते हैं और विधायिका भी कहते हैं, दोनों में ये राजनीतिक दल के लोग होते हैं। तो बट नेचुरल है कि इन्हें भी अपने काम को अंजाम देने के लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा। बड़ी खूबसूरत बात यह है मित्रों कि चाहे वो सरकारी संगठन हो, याद रखिए, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन ही क्यों ना हो, अगर वो बड़े स्तर का है तो, और चाहे वो भारत का संगठन हो, चाहे वो वैश्विक संगठन हो, चाहे वो अभी का संगठन हो, चाहे वो मध्यकाल का संगठन हो, या यूं कह लीजिए कि हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो चाहे वो प्राचीन भारत के संगठन क्यों ना हो, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्वरूप है, वो बिल्कुल एक सा ही है, लगभग लगभग एक सा है। हाँ, रूल्स रेगुलेशन के तहत उनके जो अधिकार होंगे, उनके जो कार्य होंगे, कार्य करने की जो प्रणालियां होंगी, वो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो ढांचा है वो ढांचा बिल्कुल एक जैसा होता है। ढांचा क्या होगा भारत जैसे बड़े देश के लिए? एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होगा, केंद्र सरकार के समकक्ष। हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय हेड है, सरकार के राष्ट्रीय हेड है। उसी तरह से किसी भी राजनीतिक दल का एक राष्ट्रीय स्तर पर समूह होगा, संगठन होगा। और दूसरा संगठन बट नेचुरल है कि फिर राज्यों के स्तर पर होगा, राज्यों में भी उन्हें अपना संगठन बनाना पड़ेगा। एक पिरामिड आकार को लेकर के तो चलेंगे ना, क्योंकि केंद्र ही राज्य जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन है वही तो सब कुछ नहीं कर लेगा। जब आप राज्यों के स्तर पर बना लेते हैं तो बट नेचुरल है कि फिर राज्य भी बड़े बड़े हैं, तो एक ही संगठन वहां काम नहीं करेगा। तो राज्यों से फिर आप जिलों में पहुंचते हैं, जिलों के बाद फिर आप तहसील पर पहुंचते हैं, तहसील के बाद आप फिर और उससे नीचे के स्तर पर पहुंचते हैं। यानी कि आप पाएंगे कि जो हमारी प्रशासनिक इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां जिस तरीके से काम करती हैं, लगभग लगभग राजनीतिक संगठन भी उसी पैटर्न पर काम करते हैं। तब जाकर के वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाते हैं, और ये नहीं कि केवल एक क्षेत्र के ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाते हैं, पूरे देश के ग्रास रूट लेवल पर तक पहुंच पाते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि पूरे देश के ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने की चिंता राष्ट्रीय दलों को होती है, जो ये मान करके चलते हैं कि उन्हें लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कि अन्ना द्रमण मुनियत कड़गम है, डीएमके है, तेलुगु देशम है, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां अब ये क्यों उत्तर प्रदेश में अपना संगठन बनाएंगी, क्योंकि मालूम है कि उत्तर प्रदेश में वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं उस आइडियोलॉजी को समझने वाले या उसकी जरूरत ही नहीं है वहां के लोगों को। तो बट नेचुरल है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने जो संगठन बनाती हैं वो क्षेत्र विशेष तक अपने संगठन को रखती है, इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती हैं। जबकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो पूरे देश को लेकर के चलती हैं, उनके निगाह में पूरा राष्ट्र होता है। तो इनके संगठन बहुत बहुत बड़े बड़े संगठन होते हैं। तो जैसे कमलनाथ जी, तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का एक केंद्रीय संगठन है, उसके अध्यक्ष कौन है, राहुल जी उसके अध्यक्ष हैं। अब राज्यों के अध्यक्ष बनाए जाएंगे, है ना, राज्यों के अध्यक्ष में उन्होंने कमलनाथ जी को बनाया, और सभी राज्यों के अपने अपने अध्यक्ष हैं, वो चुनाव को देख करके, स्थितियों को देख करके उनमें बदलाव होते रहते हैं। सामान्यतया धारणा ये होती है कि जो राज्य का जो अध्यक्ष होगा, अगर वहां सरकार उनकी पार्टी चुनाव जीत कर आती है, तो सामान्यतया, ये कोई अनिवार्य नहीं है, ये कोई संविधान सम्मत नहीं है कि संविधान में लिखा हुआ है, तो ज्यादातर ये माना जाता है कि जो अध्यक्ष है वो वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। एक सामान्य सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूं, वो तो ये है कि फिर चुनाव में कितने सीट, कितनी सीट मिली है, किन क्षेत्रों की सीट मिली है, किस तरह का कंपोजिशन तैयार हो रहा है, किस तरह के प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं, तो ढेर सारी चीजें चुनाव में काम करती हैं। तो उसके आधार पर जो स्टेट हेड है वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि कोई दूसरे भी बन सकते हैं, बाहर से भी आकर के बन सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो मित्रों, ये थोड़ी सी मैंने आपको से पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में व्यावहारिक बातें की हैं। मित्रों, मैं आप सबको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। एक और न्यूज़पेपर्स की इम्पोर्टेंट क्लिपिंग है, मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा विशेष रूप से, वो हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान की है। ये खासकर जो अभी कानून, जो अफ्सा का, जो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जो हटाया गया है उसको लेकर के है। ये भी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट आर्टिकल है, तो इसे भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब मैं आता हूं दोस्तों ईमेल पर। सबसे पहले मैं आप सब की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा आराधना वर्मा को, जो फारबिसगंज बिहार से हैं। उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल की है, उन्हें बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईमेल लिखने वाले आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हीं में से कुछ के नाम हैं, राहुल भनौत आप काबरी हरियाणा से हैं, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से हैं, रजनी शुक्ला इलाहाबाद से हैं, राहुल कुमार पुणे से हैं, हेमेंद्र शर्मा जयपुर से हैं, मनीषा पाल भोपाल से हैं, और आशीष राव निगम भखा सुमेरपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के मैं इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा, और 3 दिनों के लिए मंगलवार को फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए हम सबकी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।